समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात। कार्यक्रम आज सवेरे में आप सभी का स्वागत है। आज जून महीने का पहला दिन है और हम उम्मीद करते हैं कि ये महीना आपके हित में बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा। आज के अंक में हम आपको देंगे देश और दुनिया के समाचार। इसके अलावा इतिहास की बात करेंगे कि आखिर क्यों मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अभिभावक दिवस। इसके अलावा मौसम की जानकारी देंगे और महानगरों के मौसम का भी हाल जानेंगे। और आज मेरा साथ दे रही हैं मेरी सहयोगी अनीता आनंद। नमस्कार अनीता।
नमस्कार फरहत। गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग यू अवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, wherein, like Farhat mentioned, we give you the latest in national international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is the 1st of June. So let's begin with the headlines first.
धन्यवाद अनीता। सबसे पहले मुख्य समाचारों से शुरुआत करते हैं। नागालैंड में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी 7 विधायक सत्तारूढ़ नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी में शामिल हो गए हैं। नागालैंड विधानसभा के अध्यक्ष शोरिंगेन लोंगकुमेर ने एनसीपी के 7 विधायकों के एनडीडीपी में विलय की मंजूरी का आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही 60 सदस्यों वाली विधानसभा में एनडीपीपी के विधायकों की संख्या 32 हो गई है।
The Indian Army is conducting trials of next-generation defense technologies at key locations across the country, including the Pokhran Field Firing Ranges, Babina Field Firing Ranges and the Joshimath. The Ministry of Defense in a statement said that these field trials are being conducted under near-combat conditions, integrating electronic warfare simulations to assess the performance of cutting-edge defense systems rigorously. Air defense equipment demonstrations are also scheduled to take place in Agra and Gopalpur. The demonstrations feature a wide array of advanced technologies developed under the Atmanirbhar Bharat initiative. Key platforms undergoing evaluation include unmanned aerial systems, UAV-launched precision-guided munitions, loitering munitions, low-level lightweight radars, electronic warfare platforms and specialized vertical launch drones. A large number of defense industry partners are taking part in the demonstration. The ministry said that trials are designed to ensure the rapid absorption of emerging technologies to meet evolving battlefield requirements. We spoke to defense expert Lieutenant General Rajiv Chopra about the trials.
India has a wide variety of terrain. It starts from altitude in the Sachin where the temperatures dip to minus 50, 55. And we also have terrains which is in Rajasthan where the temperatures go up to minus 55. Humid conditions in various jungle terrains also. The same equipment is supposed to be used and performed by the soldiers in different terrains and different climatic conditions. Therefore, it is essential that these equipment is tried and tested under various climatic conditions, terrain conditions. For example, like the aircraft, it needs to be tried under various flight conditions. And the armored tank is supposed to be tested and performance has to be tested both in terms of mobility and firepower under various terrain and climatic conditions. The third, the most important weapon, the rifle. The same rifle is used in Sachin and the same rifle is used in Rajasthan. Therefore, it has to be tested that it withstand the rigors or terrain, the usage and the climate.
वहीं राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने पाकिस्तान के लिए जासूसी के मामले में 8 राज्यों में 15 स्थानों पर तलाशी ली है। ये छापेमारी दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम और पश्चिम बंगाल के संदिग्ध ठिकानों पर की गई। इस दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, संवेदनशील आर्थिक दस्तावेज और अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। एनआईए के अनुसार ये संदिग्ध पाकिस्तानी एजेंटों से जुड़े थे और पैसों के लिए जासूसी करते थे। एनआईए ने सिलसिले में एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मामला दर्ज किया था जो वर्ष 2023 से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी दे रहा था।
इन पाकिस्तान द बलूच लिबरेशन आर्मी BLA फ्रीडम फाइटर्स हैव टेकन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ सोहराब सिटी इन बलूचिस्तान प्रोविंस, पैरालाइजिंग ऑल मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स ऑफ द स्टेट। BLA स्पोक्सपर्सन जयंत Baloch said that the operation continued for over 3 hours, during which the fighters took control of the paramilitary force station, police station, deputy commissioner office, guest house and bank, damaging infrastructure. He claimed that BLA had taken complete control of Sohrab city and set up checkpoints at the Quetta Karachi and Sohrab Gidar main highways, further tightening restrictions on state movement through the snap checking. People from Balochistan are currently fighting for their independence from Pakistan. Various human rights organizations of Balochistan have time and again highlighted the repression by Pakistani forces in the province.
और अनीता, आज विश्व दुग्ध दिवस मनाया जा रहा है और इसके बारे में हम आगे इतिहास पन्नों पर बात भी करेंगे, लेकिन हमारे संवाददाता गुजरात से उन्होंने ये खबर भेजी है कि दूध के वैश्विक भोजन लाखों लोगों के लिए आजीविका के प्रमुख स्रोत के रूप में महत्व को उजागर इससे किया जा सकता है। वैश्विक स्तर पर दूध उत्पादन 2% प्रतिवर्ष की दर से लगातार बढ़ रहा है, लेकिन भारत 5.7% की उल्लेखनीय वार्षिक वृद्धि दर के साथ दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक का खिताब अपने नाम कर रहा है।
पिछले 2 दशकों में गुजरात ने दूध उत्पादन में 11.8 मिलियन टन की अभूतपूर्व वृद्धि के साथ देश में चौथा स्थान हासिल किया है। राष्ट्रीय दूध उत्पादन में सालाना 5.7% की वृद्धि हुई है, जबकि गुजरात लगातार प्रयासों और नीतिगत समर्थन की बदौलत 9.26% वार्षिक वृद्धि के साथ दूध उत्पादन में आगे है। गुजरात में सेक्स सीमेन डोजिंग और IVF सब्सिडी जैसी उन्नत प्रजनन तकनीकें भी किसानों को मवेशियों की नस्ल सुधारने और दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
और अनीता, अगर आपको लेवेंडर की खुशबू का जो है वो लुत्फ उठाना है तो आप जम्मू कश्मीर का रुख कर सकती हैं, क्योंकि वहां पर डोडा जिले के भद्रवाह में आज से 3रा लेवेंडर महोत्सव शुरू हो रहा है। 2 दिन के इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह करेंगे। इस महोत्सव का आयोजन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और जम्मू के भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान ने किया है। इसमें लेवेंडर से जुड़े उत्पादों और प्रौद्योगिकियों में नवाचारों का प्रदर्शन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
इस वर्ष का लैवेंडर फेस्टिवल कई मायनों में विशेष होने वाला है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों के कई इलाकों में भी CSIR अरोमा मिशन के तहत लैवेंडर की खेती की बढ़ती कामयाबियों का जश्न मनाएगा। इस मिशन के तहत 5,000 से अधिक किसानों और युवा उद्यमियों को दूर दराज के क्षेत्रों में लैवेंडर की खेती से जोड़ा गया है। इन्हें मुफ्त क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल और पूरी तकनीकी सहायता प्रदान की गई है, जिसमें खेती, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग शामिल है। इस मिशन के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में 50 से अधिक डिस्टिलेशन यूनिट स्थापित किए गए हैं, जिनसे लोकल लेवल पर लैवेंडर उत्पादों की प्रोसेसिंग को बढ़ावा मिला है। लैवेंडर महोत्सव का मुख्य उद्देश्य खुशबूदार फसलों में कृषि आधारित उद्यमिता को और अधिक बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम देश भर से किसानों, साइंसदानों और शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स और उद्योगपतियों, नीति निर्माताओं और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाएगा, जिसका असर लंबे समय तक और राष्ट्रीय सतह की अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिल सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सायरा मुज्तबा।
And now moving on to the world of sports. In IPL cricket, 5-time champions Mumbai Indians will lock horns with Punjab Kings in the second qualifier at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad this evening. The match will begin at 7:30 p.m. We have more from our sports desk.
Mumbai Indians have won 5 IPL titles so far, while the Punjab Kings will be looking to win its maiden IPL title in the competition's history. The winner of this game will face the Royal Challengers Bengaluru in the final match on Tuesday at the same venue. Next we have from Pro Kabaddi League Season 12 player auction, where on the day one Iranian all-rounder Mohammad Reza Shadlui became the first ever player in PKL history to breach the 2 crore rupees mark for the 3 consecutive seasons. Moreover, last season standout raider Devang Dalal became the second most expensive player after Bengal Warriors signed him with a massive bid of 2.2 crore rupees. Star raider Ashu Malik drew the next biggest bid of 1.9 crore rupees after Dabang Delhi KC used their final bid match card to retain him for 2 seasons. Raid machine Arjun Deshwal was the third most expensive raider on day one of the auction as he moved to Tamil Thalaivas for 1.405 crore rupees. On the other hand, record breaker Pradeep Narwal and Sahil Gulia were some of the top names who went unsold on the opening day of the auction. In football, the All India Football Federation has announced a set of amendments to its regulations on the status and transfer of players, which will come into effect from today. The reforms focus on enhancing player welfare, supporting women's and youth football more effectively, and improving regulatory transparency in accordance with FIFA standards. With Ritu Srivastav, Chirag Jha, Sports Desk.
और अनीता, खेलों के बाद पूर्वोत्तर राज्यों में हो रही बारिश की बात कर लेते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में पिछले दो दिन में मूसलाधार बारिश से जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। पिछले 24 घंटे में तेज वर्षा से भूस्खलन, मकान ढहने और डूबने की घटनाओं में 27 लोगों की मौत हुई है। बंगाल की खाड़ी की अगर बात की जाए तो कल लगातार दूसरे दिन वहां पर तेज वर्षा हुई। तेज वर्षा से जुड़ी घटनाओं में अरुणाचल प्रदेश में 9, मेघालय में 6, असम और मिजोरम में 5-5 तथा त्रिपुरा और नागालैंड में 1-1 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। कई जिलों में यातायात पर भी काफी असर पड़ा है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन तक देश के पूर्वी, पश्चिमी, मध्यवर्ती और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। और अब आइए श्रोताओं, हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम बात करेंगे महानगरों की खबरों का। तो सबसे पहले अनीता से जान लेते हैं चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में जुड़ी खबरों में क्या है खास।
राइट फरद, तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज लॉन्च सिंपल गव, अ डिजिटाइज्ड सेल्फ डिक्लेरेशन बेस्ड सिस्टम टू इश्यू की सर्टिफिकेट्स एंड एनओसीज इन अ डे। द इनिशियल रोल आउट कवर्स 10 सर्विसेज इंक्लूडिंग सैनिटेशन सर्टिफिकेट्स, पब्लिक बिल्डिंग लाइसेंसेज, रजिस्ट्रेशन फॉर ओल्ड एज होम्स, hostels for working women and women's homes, solvency certificates, white category industries list, NOCs for converting wetlands to non-agricultural use, good conduct certificates and NOCs for government staff applying for passports. The services were launched by Chief Minister M.K. Stalin. There are plans to add 150 services to this soon. With Simple Gov, most services will be delivered within a day using digital KYC, QR codes, automated workflows and self-declaration forms. The Tamil Nadu Fish Food Festival will conclude today. The festival is being organized by the Department of Fisheries and Fishermen Welfare at Island Grounds in Chennai. The objective of organizing the festival is to help the public gain knowledge about various fish-based food items. More than 50 stalls and exhibition hall for ornamental fish are, among others, set up at the venue. Cultural events and cooking competitions are also being organized for students and women from fishing communities. Customs sleuths at Chennai Airport arrested a man for smuggling 6 kilograms of hydroponic ganja from Bangkok, Thailand. The passenger was intercepted on suspicion to exit the arrival terminal. Customs sleuths searched him and found an unusually high number of sachets of snacks. When these packets were unwrapped, hydroponic ganja was found hidden inside. At least 6 kilograms of ganja, valued at approximately 6 crores, was seized from the flyer. Hydroponic ganja, unlike regular cannabis, is grown in a controlled atmosphere without soil and is in high demand in the illegal narcotics market for its high THC content. The passenger was arrested under the NDPS Act and remanded in judicial custody. Karnataka Governor Thawar Chand Gehlot inaugurated the Center for Future Skills in Mysuru yesterday. The center has come up in Karnataka State Open University. It will function in collaboration with the National Skill Development Corporation, Skill India and Ethnotech Group. The youth will be imparted with industry-relevant skills and future-ready competencies. In his address, the governor highlighted the transformative role of skill-based education in nation-building exercise. Mr. Gehlot noted that Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, National Skill Development Mission, Skill India Mission and National Apprenticeship Promotion Scheme are creating a globally competitive and work-ready workforce. A high-impact humanitarian assistance and disaster relief exercise was conducted in Bengaluru yesterday to bolster inter-agency preparedness to ensure swift, coordinated response during any exigency. The exercise was led by the Gurkha Battalion of the Amphibious Brigade of the National Disaster Response Force, the State Disaster Response Force, State Emergency Services and local civil authorities. The exercise was undertaken keeping the monsoon season in mind to tackle the risk of urban flooding. The exercise replicated realistic emergency scenarios to test the synergy of the disaster response ecosystem. Miss Thailand opened Suchata Chuangshri has been crowned Miss World 2025 at the 72nd edition of the Miss World pageant at the Hitex Exhibition Center in Hyderabad last evening. The winner was crowned Miss World 2024, Kristina Piskova, marking the culmination of a month-long cultural exchange and competition.
I would love to continue on my purpose, which is breast cancer, and have more awareness in the cause that I'm standing up for. So I believe that with the Miss World title in the future, I could definitely make more impact and also helping other projects that are in need as well. It's the most honorable success I've ever had in my life.
The grand finale brought together 108 contestants from around the globe. The top contestants had advanced through a series of fast-track events like the head-to-head challenge, Top Model, Beauty with Purpose, Talent, Sports and Multimedia before being narrowed down to 40 quarterfinalists, then a top 10 in each continental group, followed by top 5, top 2 and finally one crown winner. Finalists have been put through a round of thought-provoking questions by the panel of judges. Miss Thailand Opel Suchata Chuangshri answered a question from actor Sonu Sood that what the journey taught her about storytelling and personal responsibility. Her answer was that she learned they must become people of their loved ones look up to, and no matter how far they go, their actions should always speak louder. India got eliminated when top 5 shortlisted out of the top 10 contestants were selected from each region. The event witnessed captivating performances, including a spirited Bollywood dance segment by Jacqueline Fernandez and actor Ishan Khattar. Actor Sonu Sood was presented with the Miss World Humanitarian Award at the event.
और अब दिल्ली मुंबई कोलकाता की खबरों का रुख कर लेते हैं अनीता. दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की याचिका को खारिज कर दिया है. इसमें उन्होंने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए भूमि के बदले नौकरी घोटाले के मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी. और अब मुंबई का रुख करते हैं. महाराष्ट्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले 6 राज्य निवासियों के परिवारों को 50-50 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की है. शुरुआत में सरकार ने प्रति परिवार 5 लाख की सहायता राशि घोषित की थी, लेकिन बाद में राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद राशि बढ़ा दी गई. बढ़ा हुआ मुआवजा प्रभावित परिवारों को वितरित कर दिया गया है. और अब कोलकाता की ओर बढ़ते हैं. पाकिस्तान से जुड़े जासूसी मामले में आज कोलकाता के पार्क सर्कल स्थित एक होटल से राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है. पूछताछ के बाद उसके पास से लैपटॉप और दस्तावेज बरामद किए गए हैं. खिदरपुर के मोमिनपुर में एक विदेशी मुद्रा विनिमय कार्यालय की तलाशी ली गई है. पाकिस्तान से जुड़े जासूसी मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कोलकाता के पार्क सर्कस, खिदरपुर और अलीपुर इलाकों में छापेमारी की. और अब महानगरों के मौसम का हाल जानते हैं. तो राजधानी दिल्ली में आज बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. मुंबई में भारी बारिश की संभावना है. न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा. कोलकाता में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है. न्यूनतम तापमान रहेगा 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
एंड चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन. The minimum temperature was 28 degrees and the maximum will be around 38 degrees Celsius. Bengaluru is also expected to have a generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 21 degrees and the maximum will be around 27 degrees Celsius. Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky with possibility of rain or thunderstorm or dust storm. The temperature will hover between a minimum of 25 degrees and a maximum of 36 degrees Celsius.
और अनीता, जैसा कि हमने शुरुआत में बात की थी कि भारत जो है वो दुग्ध उत्पादों में जो है तेजी से बढ़ोतरी कर रहा है, तो आइए आज विश्व दुग्ध दिवस के इतिहास पर थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं. और ये दिवस आखिर क्यों मनाया जाता है, तो ये दैनिक जीवन में दूध के महत्व को समझने के लिए हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है. लखनऊ, कानपुर, बरेली, बनारस और गाजियाबाद बड़ी आबादी वाले जिलों में भी दुग्ध व्यवसाय से जुड़कर लोग अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं.
जी, इट इज ऑब्जर्व्ड annually on 1st of June with the aim to unite countries, organizations and communities to recognize and amplify the dairy sector's impact on sustainable agriculture, economic development and global health. And today is also the Global Day of Parents. The day emphasizes the critical role of parents in rearing of children. The theme for this year is Raising Parents. The theme draws attention that parenting is a learned skill. In 2012, the UN General Assembly proclaimed 1st of June as the Global Day of Parents, to be observed annually in honor of parents throughout the world.
जी अनिता, और हमने बात की वैश्विक अभिभावक दिवस की, और मेरा मानना है कि माता पिता जो हैं वो कई सारी भूमिकाएं निभाते हैं. शिक्षक हो, पालन पोषण करने वाले हों, चीयर लीडर हो, अनुशासित करने वाले हों, या फिर विश्वास पात्र, तो उनके लिए ये दिन मनाना जो है बहुत ही जरूरी हो जाता है. आजकल के समय में जब डिजिटल होती दुनिया ने काफी दूरी पैदा कर दी है, क्योंकि जब मोबाइल हमारे हाथ में आ गया है तो काफी हद तक जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता से दूर होने लगे हैं. यहां तक कि माता पिता अभी अपने बच्चों को इतना समय नहीं दे पाते हैं, तो इस पर भी काम करने की जरूरत है, और शायद वैश्विक अभिभावक जो दिवस है वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है.
जी,
और अब आइए इतिहास में दर्ज कुछ और घटनाओं का जिक्र कर लेते हैं.
राइट, वी बिगिन विद 1874. द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्मली डिसॉल्व्ड फॉलोइंग द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 एंड द पैसेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. In the year 1916, Lokmanya Bal Gangadhar Tilak coined the statement, "Freedom, which is to Raj, is my birthright, and I shall have it at a public meeting in Ahmednagar." In the year 1930, the first Indian luxurious fast train Deccan Queen was started from Victoria Terminus CST in Pune.
और 1862 में सत्येंद्रनाथ टैगोर ने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए इंग्लैंड की यात्रा की थी. और अब आइए अंत में बढ़ते हैं हम अपनी आखिरी सेगमेंट की ओर, और याद करते हैं कुछ जानी मानी हस्तियों को. तो अनीता, सबसे पहले आप किसके बारे में बताने जा रही हैं?
वी आर टॉकिंग ऑफ पापा जैकलीन. टुडे इज हिज डेथ एनिवर्सरी. ही पास्ड अवे इन द ईयर 1873. दी अमेरिकन म्यूजिशियन एंड अ पायनियरिंग बैंड लीडर इन न्यू ऑर्लीन्स इन द ईयर्स फ्रॉम स्पैनिश अमेरिकन वॉर to World War I. He was often credited for training many musicians who would later become successful in jazz music. Lane's Reliance Brass Band was first to fuse European, African and Latin music. The earliest jazz musicians can be traced back to playing in the Reliance Brass Band or being influenced by those who had. Many of New Orleans musicians who first spread jazz around the U.S. in 1910s and 20s got their start in Lane's marching band, including the members of the original Dixieland jazz band. I'm playing a snippet from his performance, Children.
और आज के दिन जन्म हुआ था हिंदी सिनेमा की महान अभिनेत्रियों में से एक, नरगिस दत्त का. नरगिस मशहूर गायिका जद्दन बाई की पुत्री थी. कला नरगिस को विरासत में मिली, और सिर्फ 6 साल की उम्र में नरगिस ने फिल्म तलाशे हक से अभिनय की शुरुआत की. फिल्म मदर इंडिया में राधा की भूमिका के जरिए भारतीय नारी को एक नया और सशक्त रूप देने वाली नरगिस हिंदी सिनेमा की महानतम अभिनेत्रियों में से एक गिनी जाती रही.
In a career spanning 3 decades, Nargis made her screen debut, like you mentioned, in Talashe Haq. And her acting actually began with the film Tamanna, released in 1942. Nargis had her first leading role with Takdeer. Nargis had her breakthrough with the romance film Andaz, followed by musical Barsaat. Following this, she starred in, we all know, Raj Kapoor's cine drama Awara, which was a major critical and financial success. Let's listen to a medley of songs picturized on the actress Nargis.
इकरार हुआ है प्यार से, फिर क्यों डरता है दिल.
कहता है तेरा मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंदिर. आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार. छूने लगेगा आसमां
Today is also the death anniversary of Helen Adams Keller, the American author, disability rights advocate, political activist and lecturer. Born in to Scumbia, Alabama. She lost her sight, and after her hearing about a bout of illness when she was about just 19 months old, she then communicated primarily using home signs until the age of 7, when she met her first teacher and lifelong companion, Ann Sullivan. Keller also fought for human rights for people with disabilities, and she was also a prolific author, writing 14 books and hundreds of speeches and essays on topics ranging from animals to Mahatma Gandhi. She campaigned for those also for women's suffrage and people with disabilities, and also labor rights and world peace.
और अब हिंदी साहित्य जगत का एक जाना माना नाम डॉक्टर बलदेव वंशी को हम याद कर रहे हैं। दर्शक दीर्घा से उपनगर में वापसी, अंधेरे के बावजूद, बगों की दुनिया, आत्मदान, कहीं कोई आवाज नहीं, टूटा हुआ तार, तो बहुत सारी कविता संग्रह उनकी है जो काफी लोकप्रिय हुई और उनका जीवन कविता को समर्पित रहा। हम आपके लिए लेकर आए हैं डॉक्टर बलदेव वंशी की कविता उनकी जुबानी, प्रसार भारती की आर्काइव से।
नदी अपने आप नहीं उतरती पहाड़ों से नीचे, उसे धरती की प्यास बुलाती है, क्योंकि धरती की प्यास नदी में बसी है, इसलिए नदी दौड़ी चली आती है। इस नदी ने अपने प्रवाह में बड़े कड़े पत्थरों को पीसकर जर्रा बना दिया है, तभी प्रवाहमान हुई है नदी, तभी गतिमान हुई है। इसने अपने भीतर के सभी अवरोधों को स्वयं ही तोड़कर बहा दिया है, तभी प्रवाहमान।
और आज भारतीय हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी साजिद वाजिद में से एक वाजिद अली खान की जो है वो पुण्यतिथि है। वाजिद खान कलात्मक जोड़ी साजिद वाजिद बनाने के लिए अपने बड़े भाई साजिद खान के साथ जुड़े रहे। उन्होंने सबसे पहले 1998 में सलमान खान की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या के लिए संगीत दिया। 1999 में उन्होंने सोनू निगम की एल्बम दीवाना के लिए भी संगीत दिया। इसके अलावा वाजिद खान ने कई शो जज भी किए। तो आइए सुनते हैं फिल्म वीर से ये प्यारा सकी।
और नींदों में सपने कभी तो किनारे पे उतर मेरे सपनों से आ जा जमीन पे और मिल जा कहीं पे।
इसके अलावा साजिद वाजिद ने गानों में भी काफी सुर्खियां बटोरी, जिसमें फिल्म दबंग शामिल है।
ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, तेरे मस्त मस्त दो नैन तेरे दिल का ले गए।
Today is also the 10th anniversary of David Lee Ruffin, the American soul singer most famous for his work as one of the lead singers of the Temptations during the group's Classic Five period, it was later known. Ruffin was the lead voice on such famous songs as My Girl and Ain't Too Proud to Beg. He later scored top 10 singles as a solo artist. I'm playing a snippet from My Girl.
On a cloudy day, we can all sing this one. Come on. When it's cold outside, I've got the butler me.
Oh, baby,
I guess you say what can make me feel this way.
Today's also the birthday of Patrick Charles Eugene Boone, the Pat Boone, American singer-songwriter, actor, author, television personality, radio host, and philanthropist. He has sold nearly 50 million records and had 38 top 40 hits and has acted in many films also. I am playing Love Letters in the Sand by Pat Boone.
On a day like today, we pass.
और आज हम याद कर रहे हैं भारतीय फिल्म संगीतकार, वादक, गायक, वायलिन वादक और संगीत निर्देशक इस्माइल दरबार को। उन्हें हम दिल दे चुके सनम के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी सम्मानित किया जा चुका है। और इन्हीं के साथ कार्यक्रम आज सवेरे का वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का। हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए जरूरी होगा।
Stay tuned for Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, and followed by morning news at 8:15. Thanks for tuning in. Have a great day.
Namaskar.